ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, द्वापर युग से अब तक हम सभी आत्माओं ने अनेक यात्राएं करते आई हैं, परंतु अब है हम सभी की होगी अंतिम यात्रा, वो है रूहानी यात्रा। ये समय की पुकार है, ये वर्तमान समय के लिए आवश्यक है। समय बहुत बलवान है, हम श्रीमद् भगवद गीता में सुनते आए हैं, महावाक्य है, काल अस्मि लोकख्य कृत प्रवृद्ध। तो उस महावाक्य के अनुसार स्वयं महाकाल अभी आ चुके हैं, कहते हैं तुम सभी को अभी ले चलने में आया हूँ, सबको चलना पड़ेगा। और ये यात्रा है अंतिम यात्रा, सभी को जाना पड़ेगा, इसमें कोई आनाकानी नहीं चलेगा, सबको ही जाना पड़ेगा, सबको ही जाना पड़ेगा। और ये हमारी अंतिम यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है। अब तक तो हद की यात्राएं करते आए हैं, वो सब अल्पकालीन यात्राएं थी, परंतु ये है बेहद की यात्रा, और इसमें सभी आत्माएं साथ चलेगी, एक ही साथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या तैयार हैं? तैयार हैं। भगवान कहते हैं तुम चाहो या नहीं चाहो, तुम सबको मैं ले चलूँगा। जो बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं, जो बाबा की आज्ञा को पालन करते हुए खुशी खुशी से स्वइच्छा से निजी इच्छा से करेंगे, वो तो बाबा के साथ बहुत मस्ती से उड़ के जाएंगे। परंतु जो अलवेले पुरुषार्थी हैं, जिनको भगवान का परिचय नहीं है, उनको भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो मजबूरी से जाएंगे। बाबा के बच्चे जो रियल पुरुषार्थी हैं, दिल के पुरुषार्थी हैं, वो मोहब्बत से जाएंगे, प्यार से जाएंगे। लेकिन जो अलवेले पुरुषार्थी हैं और अनजान हैं, वो सब मजबूरी से जाएंगे, धर्मराजपुरी क्रॉस करके जाएंगे। वहाँ ऐसा अनुभव होगा जैसे क्रॉस पर चढ़कर जा रहे हैं। तो चलना है ना सभी को, लेकिन धर्मराजपुरी होते हुए ना जाएं, ये हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, इसके लिए कुछ नया रास्ता हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हम सभी के लिए एक सैंपल, एक साकार रूप में एक उदाहरण बना के हम सभी के सामने रखा है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, संसार में तीनों लोकों में तीनों कालों में मुझे कुछ ऐसा कर्तव्य नहीं है जो करना बाकी है, परंतु फिर भी लोक संग्रह अर्थ मैं आकर ये संसार में श्रेष्ठ कर्म करके दिखाता हूँ, ताकि लोग उसको अनुकरण करें। तो स्वयं परमात्मा बाबा आकर खुद करके और हमारे सामने साकार रूप में कैसे करना है, उसका एक रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा को तैयार करके गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए आदर्श से अनुकरणीय है, उदाहरण मूर्त है, उनको ही कॉपी करना है, उनको ही फॉलो करना है। हमें कोई नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर नहीं। दूसरों से गुण उठाना अलग बात है, दूसरों से प्रेरणा लेना अलग बात है, लेकिन एक बाबा को ही फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे समान एक गृहस्थी व्यक्ति होते हुए भी ऐसा क्या पुरुषार्थ किए जो अंतिम समय में बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनकर सेकंड में उड़ गए, और आज भी कब से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए, बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ जल्दी आओ, साथ में चलेंगे घर, फिर आएंगे राजधानी में। क्या हम सभी तैयार हैं? चलना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। हमें नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का नंबर वन परिवर्तन का फाउंडेशन क्या था? क्या था, क्या था? ब्रह्मा बाबा के जीवन में नंबर वन परिवर्तन का फाउंडेशन था बेहद की वैराग्य वृत्ति। पहले दिन से लेकर अंत तक बाबा की वैराग्य वृत्ति कायम रही। तो बाबा समान जब तक हम वैरागी नहीं बनेंगे, हम इस संसार से उपराम होकर जा नहीं सकेंगे, उड़ नहीं सकेंगे। ऐसे भी देखा जाता है, जैसे किसी देश में विदेश के लोग बहुत हैं और उस देश से ऑर्डिनेंस निकलता है, अब भी चले जाओ, अभी का अभी चले जाओ, अपने देश में छोड़ के चले जाओ, तो उस समय क्या करेंगे? वैराग्य आएगा ही और निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ही महाकाल आए हैं, कहते तुम किसको पुकार रहे थे? काल आता है तो एक को लेके जाता है, महाकाल में आया हूँ, तुमको साथ ले चलूँगा। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना आवश्यक है। जब तक वैराग्य नहीं होगा, हम उड़ नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, इस यात्रा के यात्री नहीं बन सकेंगे, फिर तो सजा खा के जाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन है वैराग्य वृत्ति। तो अंतिम उड़ान के लिए या रूहानी यात्रा के लिए, अंतिम यात्रा के लिए नंबर वन फाउंडेशन है बाप समान बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो ये वैराग्य वृत्ति क्या है? वास्तव में वैराग्य वृत्ति क्यों चाहिए? वैराग्य वृत्ति क्यों चाहिए? क्योंकि अभी विश्व परिवर्तन का आधार, समय को समीप लाने का आधार ये वैराग्य वृत्ति है। आज सभी मनुष्यात्माएं अल्पकालीन सुख में व्यस्त हो चुके हैं, किसी को भी वैराग्य नहीं है। बाहर की दुनिया की आत्माओं की तो छोड़ो, हमारे ब्राह्मण आत्माओं में भी वैराग्य नहीं है। जब तक हम सभी को वैराग्य नहीं आएगा, हम ब्राह्मण बच्चों में संगठित रूप में जब तक बेहद का वैराग्य नहीं है, तब तक दुनिया वालों को भी वैराग्य नहीं होगा। हम सभी को एक ही साथ संगठित रूप में वैराग्य बनना पड़ेगा और हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति ही लोगों में अल्पकाल जो सुख की प्राप्ति से वैराग्य दिलाएगा और वो बाबा का परिचय को स्वीकार करेंगे, बाबा को पहचानेंगे। अभी भगवान को पाने की किसी की इच्छा नहीं है, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये संसार के जो माया का पंप देख रहे हैं, माया के अल्पकालीन सुख के साधनों से सभी आत्माएं मस्त हैं, भूल गए हैं अपने पिता को, भूल गए हैं स्वयं को, भूल गए हैं घर को। तो हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति ही और ये संसार में जो परिवर्तन आएगा, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं क्या हालत है, तो एक सुंदर धरनी बनेगी। सभी को बाबा की पहचान मिलेगी। अंत में ऐसी एक भी आत्मा नहीं रहेगी जिसको परमात्मा का परिचय नहीं मिलेगा। सबको मिलना ही है और सबके अंदर वैराग्य आएगा, हे प्रभु अभी तो ले चलो इस संसार में। जो भक्ति में हम गाते आए थे, थोड़े लोग ही गायन करते थे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, देख तेरी दुनिया का क्या हाल हो गया भगवान, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, वो सबकी दिल के पुकार नहीं था, थोड़े लोग ही पुकार रहते थे। लेकिन अभी सामूहिक रूप में सभी आत्माएं, दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पाति के कोई क्यों ना हो, सभी के दिल की आवाज़ निकलेगी, हे प्रभु ले चलो अभी। और परमात्मा को सभी पहचानेंगे, दिल से बाबा कहेंगे। जब तक बाबा नहीं कहेंगे, ये संसार से मुक्ति किसकी होगी नहीं। लेकिन एक है खुशी खुशी से बाबा के साथ जाना, दूसरा है मजबूरी से जाना। समय तो सबको वैराग्य दिलाएगा ही, ऐसा समय आने वाला है, सबको वैराग्य आएगा ही, लेकिन वो समय को सारा क्रेडिट जाएगा, वो समय उनको कराएगा, इसीलिए बलिहार समय का। परंतु जो बाबा को पहचान कर बाबा की आज्ञा को स्वीकार कर खुशी खुशी से मोहब्बत से जाएंगे, उनको ही मार्क्स मिलेगा, वही उच्च पद के आसीन होंगे भविष्य में, वही स्वर्ग में सतयुग में आएंगे। तो इसलिए क्यों ना हम पहले से ही तैयारी करें। तो आज विश्व परिवर्तन का मुख्य आधार, मुख्य फाउंडेशन, समय को समीप लाने का मुख्य आधार, पहले तो हम ब्राह्मणों में संगठित रूप में वैराग्य वृत्ति, फिर संसार की सभी आत्माओं को वैराग्य वृत्ति चाहिए। दूसरी बात, आज तक बाबा कितने सालों से हमको पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिए हम बाबा के बच्चों में भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसका कारण अल्पकाल का वैराग्य। बाबा कहते आए हैं, परंतु जो सच्चा वैराग्य होना चाहिए वो है नहीं। जब तक हमारे अंदर संपूर्ण और बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत नहीं होती है, हमारे पुराने संस्कार स्वभाव भी परिवर्तन नहीं होंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही हमारे पुराने स्वभाव संस्कार सब मर्ज हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों में परिवर्तन का आधार भी बेहद का वैराग्य वृत्ति, तपस्या का फाउंडेशन भी वैराग्य वृत्ति है। जब तक हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं है, तपस्या भी नहीं हो सकती है, और जब तक तपस्या नहीं, त्याग नहीं, वो सेवा का फल भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं। तो आज बाबा तो कब से हम सभी को इशारा दे रहे हैं, बाबा शुरुआत में यज्ञ का फाउंडेशन भी हमारे दादियों से त्याग तपस्या से ही कराए, सेवा में बाद में दादियों को भेजे। तो हमारे जीवन का फाउंडेशन, आधार स्तंभ तो त्याग तपस्या है, तो तपस्या का फाउंडेशन भी वैराग्य वृत्ति है। जब तक ब्राह्मणों में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो तपस्या भी दिल से नहीं करता है कोई, इसलिए परिवर्तन भी नहीं होता है। और अंत में बाबा के साथ उड़ने के लिए अशरीरीपना की अभ्यास चाहिए। जब तक हम अशरीरी नहीं बनेंगे, बाबा के साथ उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर 50-60 उम्र में, ये किलोग्राम का जो शरीर है, ये दुम साथ में लेके तो नहीं जा सकते हैं, आत्मा ही उड़ेगी। तो ये शरीर को भूलना पड़ेगा, अशरीरी बनना पड़ेगा। तो अशरीरी बनने का साधन भी वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति, साथ साथ सकास देने की सेवा। अगर हम सभी आत्माओं का, बाबा कहते मनसा सेवा करो, सबको जगाओ, सबको सुख शांति की अंजलि दो, तो सकास देने की सेवा जो अंत में हम सभी को करना पड़ेगा, वो भी वैराग्य वृत्ति से ही हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। और बाबा कहते उड़ता पंछी बनना है, बाबा के साथ उड़ चलना है, तो भी उसका आधार वैराग्य वृत्ति है। इस दुनिया से बिल्कुल उपराम होना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं डायमंड बनना चाहते हो तो भी आपको वैराग्य वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। अंत में बाबा हम सभी को डायमंड बनाएंगे, सच्चा हीरा। जब तक हीरा नहीं बनेंगे, हीरो पाटधारी भी नहीं बन सकते हैं। और इस पढ़ाई में बाबा जो पढ़ाने आए हैं हम सभी को, इस पढ़ाई में पास हुई तो अनर्स बनने का मुख्य आधार भी बेहद का वैराग्य वृत्ति है। विश्व महाराजन जो उच्च पद है भविष्य में मिलना है, उसका आधार भी वैराग्य वृत्ति है। जो विश्व महाराजन होंगे, अभी से ही बेहद के त्यागी होंगे, बेहद के वैरागी होंगे, बेहद के सेवाधारी होंगे, यही फाउंडेशन है। जब तक ये बेहद का वैराग्य नहीं है, तब तक भविष्य में उच्च पद भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आज समय अनुसार हम सभी को वैराग्य वृत्ति डेवलप करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। अभी वो समय आ पहुंचा है, बाबा कितने सालों से हम सभी को चेतावनी दे रहे थे, परंतु समय का परिवर्तन देख रहे हैं, ये तो मानो एक रिहर्सल है, ट्रेलर है, अभी आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, तो अभी तो जागें मेरे भाई और बहनें। हम सामूहिक रूप से, कोई एक को वैराग्य वृत्ति आएगा तो विश्व परिवर्तन नहीं होगा, हम सभी को सामूहिक रूप में वैराग्य वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कि ये वैराग्य वृत्ति है क्या? वास्तव में वैराग्य अर्थात उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति अर्थात उपराम वृत्ति, कहीं भी लगाव ना हो, कहीं किधर भी लगाव ना हो। लगाव वास्तव में क्या है? कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कुछ भी अगर हमारी बुद्धि योग बाबा से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है, माना लगाव है। ये संसार की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में हमारा जरा भी आकर्षण ना हो, मन बुद्धि कहीं भी आकर्षित ना हो, तब हम कहेंगे लगाव मुक्त। तो जो वैराग्य वृत्ति वाला होगा वो लगाव मुक्त होगा, उपराम वृत्ति होगी। इस संसार को देखते हुए भी ऐसा अनुभव होगा कि असार संसार है, ये तो कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, मूर्छित हैं सब। गीता में महावाक्य है ना, अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये सब मरे ही पड़े हैं, सब मूर्छित है, ये तो कब्रिस्तान है, ये शमशान है। लेकिन एक लोगों को होता है वैराग्य, जीवन में कभी ना कभी कोई अघटन होता है, कुछ परिस्थिति आती है, तो लोगों को वैराग्य आता है। और वो अल्पकालीन वैराग्य नहीं चाहिए, अभी अभी चाहिए बेहद के वैराग्य, सदाकाल का वैराग्य। अल्पकालीन वैराग्य तो हद का वैराग्य है, जो सभी में कभी ना कभी जीवन में होता ही है, जैसे श्मशान में, इसको श्मशानी वैराग्य भी कहते हैं। क्यों? आप सभी देखे होंगे जब कोई मर जाता है तो उसको जब श्मशान में लिया जाता है, उस समय सभी के मन में विचार आता है, दुनिया सचमुच कोई किसी का नहीं है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, ऐसे अनेक विचार लोगों में आता है। टेम्पररली वैराग्य तो आता है, वो श्मशानी वैराग्य है, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए अभी, अभी सदाकालीन वैराग्य, बेहद का वैराग्य चाहिए। तो सदा उपराम वृत्ति, कहीं भी लगाव ना हो। लगाव होता है एक देह से और देह की दुनिया से, पुरानी देह, पुरानी देह की दुनिया, ये दोनों से लगाव होता है। लगाव भी न हो लेकिन साथ साथ घृणा भाव भी ना हो, ईर्ष्या, घृणा, नफरत भी ना हो, और कहीं प्रभावित भी ना हो, लगाव भी ना हो, जिसको कहते हैं न्यारा प्यारा स्थिति, इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो देह से वैराग्य, पुरानी देह से वैराग्य, क्या मतलब? पुरानी देह से वैराग्य अर्थात देह भान से वैराग्य। देह तो साधन है, देह के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है, देह के द्वारा ही हम पुरुषार्थ करते हैं, देह के साथ ही हम सेवा करते हैं, देह द्वारा ही हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। ये देह को संभालना भी पड़ेगा, इसको संभालना भी पड़ेगा, लेकिन देह भान से उपराम रहे। देह भान से उपराम अर्थात ये देह से भी मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, ये देह को सदा मेरा नहीं, ये बाबा का, ये बाबा का अमानत है, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, इस देह को सेवा अर्थ में ही लगाना है बस, बाकी देह में और कोई मोह नहीं, तब कहेंगे देहभान से उपराम। और देहभान के साथ साथ देह के पुराने स्वभाव संस्कार से भी उपराम, उससे भी लगाव नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी अपनी खुद की विशेषता से भी लगाव हो जाता है। मेरी विशेषता ऐसी है ना, मेरी विशेषता कहाँ से आई, मेरापन ही ना रहे, सब बाबापन, बाबापन, मेरापन नहीं, सब बाबा का दिया हुआ है। ये तन मन धन भक्ति में हम गाते थे ना, तन मन धन सब सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, वो तो तोता जैसा ही खाली रटते थे, वो समय वास्तविक अभी आया है, अभी इसमें से ममत्व तो निकाल कर मेरापन को हटाना पड़ेगा, बाबा को सौंप देना पड़ेगा। हे प्रभु, ये सब आपका है, आपकी अमानत है। देह को प्रभु की अमानत समझकर चलना है, लेकिन जो विशेषताएं भी है, जो गुण है, जो हमारे अंदर खूबी है, ये भी प्रभु की देन है, मेरा कहाँ से आया। तो अपनी विशेषता को भी मेरी विशेषता ना समझ, ये प्रभु के प्रसाद है, प्रभु की देन है, समझ के चलना है। तब कहेंगे देहभान से उपराम, और पुराने स्वभाव संस्कार से भी उपराम। क्या मतलब? क्या मतलब? बहुत लोग कहते हैं ना, क्या करें, ये मेरा पुरानी आदत है ना, पुराना संस्कार है ना, आराम से चलना, आराम से बैठना, आराम से खाना, आराम से टाइम पास करना, आराम से चलना, बहुतों को आदत है। बाबा कहते हैं ये सब कर्म बंधन ही बनाता है, तो इससे हम कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। मेरा संस्कार कहाँ से आया? ये सब रावण का संस्कार है, बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो पुराना कोई भी स्वभाव संस्कार न रहे, कोई भी अपनी तरफ आकर्षित न करे। ऐसे कि सेवा में भी कभी कभी हम ब्राह्मण फंस जाते हैं, कहते हैं मेरी सेवा, मैं नहीं हूँ तो कौन करेगा, मेरे बिना तो ये सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। अरे ये भी एक बहुत बड़ा कर्म बंधन है, ये भी कर्म भोग कराएगा नहीं। इससे भी, इस भावना से भी मुक्त, निमित्त भाव, निर्माण भाव, करण करावन हार करा रहा है, ये शरीर मेरा नहीं है, बाबा ने दिया है, करावन हार मेरे द्वारा करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, निर्माण भाव से कर रहा हूँ। तब कहेंगे देहभान से उपराम, और देह की दुनिया से भी उपराम। देह की दुनिया में दो चीज़ें आती है, एक है व्यक्ति, दूसरे हैं वस्तु। व्यक्ति भी दो प्रकार के हैं, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक संबंधी जो होते हैं वहाँ भी हमारी बुद्धि चली जाती है, वहाँ भी लगाव में आ जाते हैं, नहीं तो उनके लगाव प्रभाव में, या घृणा भाव, नफरत भाव, ये भी एक कर्म बंधन है। तो लौकिक अलौकिक दोनों संबंधियों से उपराम, ना लगाव हो, ना प्रभाव में आए, ना झुकाव हो, ना किसी के साथ घृणा नफरत की भाव, ये दोनों भाव से उपराम होना पड़ेगा। साथ साथ वस्तु, जो वस्तुएं हैं, वैभव हैं, इससे भी उपराम, स्थूल साधन या सूक्ष्म साधन सबसे उपराम। ये संसार का कुछ भी साथ लेके नहीं चलना है, सब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी साधन हमारे पास है, ये बाबा की देन है, ये सेवा अर्थ लगाएं, मेरा कुछ भी नहीं है। अपने लिए तो कुछ भी स्वीकार ना करें, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने लिए ना लगाएं, सब सेवा के लिए ही है। मेरा संकल्प भी सेवा के लिए, मेरा बोल भी सेवा के लिए, मेरा कर्म, मेरी भावना, मेरी कामना, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी श्वास, सब सेवा अर्थ है, बस मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा पर ना हो। और साधन भी बाबा कहते निमित्त मात्र है। साधन बहुत उपलब्ध है, लेकिन साधन में कहीं फंस न जाए। साधन सेवा वृद्धि के लिए निमित्त रूप में यूज करें, परंतु ये साधन को आधार न बनाए। साधन को निमित्त मात्र यूज करके सेवा में वृद्धि भले करें, परंतु हमारी साधना में कमी ना हो, हमारी साधना साधन खंडित ना करें। साधन को यूज करते हुए भी उपराम, साधन मिले तो अच्छा, साधन ना मिले तो बहुत अच्छा। ब्रह्मा बाबा साधन को कभी अपना जीवन का आधार नहीं बनाए, शुरू से ही त्यागी बैरागी रहे, एक ही प्रकार का ड्रेस अंत तक, एक ही प्रकार का ड्रेस। बाबा अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किए, कुछ भी सेवा स्वीकार नहीं किए, सब बच्चों के लिए, सब सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तो हमारे पास जो भी साधन, ये भी जब तक इस आकार में है, जरूरी है, रखना ही तो पड़ेगा, साधन के बिना सेवा भी कैसे करेंगे। लेकिन सभी साधनों को यूज करते हुए भी अनासक्त भाव, व्यक्तियों के साथ आत्मिक भाव, वस्तुओं के साथ अनासक्त भाव, इसको कहते हैं यथार्थ वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति, इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो साधन हमारी साधना में विघ्न रूप न बने। तो पुरानी देह की दुनिया से संपूर्ण वैराग्य, तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। यथार्थ वैराग्य वास्तव में जिसमें जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं उनको यथार्थ वैराग्य होता है। यथार्थ वैराग्य में जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना न्यारा उतना प्यारा। इस संसार से वैराग्य भी है, न्यारापन भी है, लेकिन बाबा का प्यार में सदा लवलीन स्थिति, उसको कहेंगे यथार्थ वैराग्य। उसको कहते हैं यथार्थ वैराग्य। कहीं लगाव में ना आ जाएं, किसी के प्रभाव में ना आ जाएं, परंतु किसी से घृणा नफरत भाव भी ना हो, कैसी भी आत्मा हो, कोई भी हो, रहम भाव हो, तो दोनों हमें कर्मबंधन ही बनाएंगे, इसलिए दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। इसलिए यथार्थ वैराग्य में न्यारा और प्यारापन दोनों हो, बैलेंस होने की आवश्यकता है, दोनों का बैलेंस रखने की आवश्यकता है। त्याग भी चाहिए, लेकिन साथ साथ भविष्य का भाग्य भी सामने दिखाई दे। इधर ये दुनिया कब्रिस्तान अनुभव हो, लेकिन सामने परिस्थान भी नजर आए। बेहद का वैराग्य अर्थात कोई रूखा सूखापन नहीं, अरे बेहद का वैराग्य अर्थात जिसमें रूहानी निशा हो, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बस बाबा के सिवाय बाबा ही संसार और कुछ नहीं। रूहानी नशा हो, सेवा हो, सेवा भी करें, ऐसे नहीं कि सेवा सेवा छोड़ के कहीं अकेले रूखा सूखा बैठ जाएं कहीं, उसको वैराग्य नहीं कहा जाता है। अंत तक बाबा ने सेवा नहीं छोड़ी, बाबा अंत तक सेवा करते रहे, लास्ट दिन तक सेवा करते रहे, लेकिन सेवा करते समय भी वैराग्य। अधिकारी भी परंतु वैराग्य वृत्ति भी है, जिसको राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि, राजा भी है लेकिन ऋषि भी है, अधिकारी भी है लेकिन वैराग्य वृत्ति भी है, साधन भी है लेकिन साधना भी कम नहीं है। तो जो यथार्थ वैरागी होंगे और निर्लेप स्थिति की अनुभूति करेंगे, निर्लेप, कहीं भी लगाव नहीं झुका हमने, कोई लेप प्रलेप उनके ऊपर नहीं, बिल्कुल संपूर्ण न्यारा प्यारा उपराम। किनारा भी नहीं करना है, छोड़ छाड़ करके कहीं अलग जाके बैठ जाना, नहीं, वो तो सन्यासी हो गए फिर। बाबा कहते हैं आपकी तो शुद्ध प्रवृत्ति है जो सत्ययुग में स्वर्ग में भी चलेगा। हम लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए, अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए, देह की प्रवृत्ति संभालते हुए तो भी निवृत्त, इसको कहते हैं यथार्थ वैराग्य। लेकिन इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना, कैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो ऐसे यथार्थ वैरागी होंगे उनके जीवन में क्या निशानियां होगी, आगे सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।